पंचम बिंदु पुरानी कथाएं। यह वह बस्तियां हैं जिनका वृत्तांत तुझे हम सुनाते हैं। 7-13 सो तू मोहम्मद कथा वर्णन कर, शायद वह विचार करें। 7-22-5 जैसा हम ऊपर लिख आए हैं कि कुरान का एक विशेष भाग शिक्षाप्रद इतिवृत्तों और कथाओं से पूर्ण है। उपर्युक्त वाक्य इसके साक्षी हैं। कुरान में वर्णित सभी विषयों का सामान्य ज्ञान इस कुरान सार की रचना से अभिप्रेत है, अतः यहाँ पर उन कथाओं का थोड़ा सा वर्णन कर दिया जाता है। इनमें से अनेक कथाएं कुछ घटा बढ़ाकर वही हैं जो बाइबल में आई हैं। आदम 1 महात्मा आदम। जब परमात्मा ने फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में एक नायब सहायक बनाने वाला हूँ, तो वह बोले, क्या उसमें तू ऐसों को बनाएगा जो खून और कला करेंगे? हम तेरी स्तुति करते हैं। भगवान ने आदम को संपूर्ण नाम ज्ञान सिखाए, फिर उसे फरिश्तों देवदूतों को दिखाकर कहा, यदि तुम सच्चे हो तो हमें इन वस्तुओं के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, जो कुछ तूने सिखाया है उसके अतिरिक्त हमको मालूम नहीं। प्रभु ने पृष्ठ संख्या 30 कहा, हे आदम, इनको इनके नाम बता दे। फिर जब उसने उन्हें बता दिया तो परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं बहुत सी बातें ऐसी जानता हूँ जिसे तुम नहीं जानते? परमात्मा ने फरिश्तों से आदम को प्रणाम करने को कहा। सब ने तो किया, किंतु सबके सरदार इबलीस ने नहीं किया। 2-4-1-5 इबलीस ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं आग से बना और यह आदम मिट्टी से। 38-5-14 फिर इबलीस ने ईश्वर के मार्ग को रोककर लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए धमकी दी। इस पर प्रभु ने कहा, उस शैतान इबलीस को स्वर्ग से निकाला जाएगा और उसकी बात मानने वालों को नर्क में डाला जाएगा। 7-2-7-5 फिर भगवान ने आदम और उसकी स्त्री को स्वर्गोद्यान में रहने की आज्ञा दी और यह भी कहा कि जो चाहे सो खाना, किंतु अमुक वृक्ष के समीप न जाना। 2-4-6 फिर शैतान ने उस आदम की स्त्री को बहकाया। 2-4-7 अमर या फरिश्ता न हो जाओ, इसलिए खुदा ने फल खाना मना किया है। 7-2-9 मैं तुमको अमर वृक्ष और अजर राज्य बता दूँ। 20-7-5 फल खाने पर उसके अवगुण खुल गए और वह पत्ते से अपने शरीर को ढांकने लगे। फिर ईश्वर ने कहा, क्या हमने तुमको मना न किया था कि शैतान तुम्हारा शत्रु है? सो उतरो। 7-2-9-11-13 इस प्रकार शैतान ने उन दोनों को स्वर्ग से निकलवा दिया। 2-4-7 जब काम पूरा हो चुका तो शैतान ने कहा, परमेश्वर ने ठीक अभिवचन दिया, किंतु मेरी बात झूठी थी। यद्यपि मेरा शासन तुम पर नहीं था, किंतु मैंने बताया और तुमने मान लिया, अतः मुझे अपराधी मत बनाओ, किंतु अपने को ठहराओ। 14-4-1 नूह महात्मा। नूह परमात्मा ने नूह को उसकी जाति के पास भेजा कि उस पर यातना पहुंचने से पहले उन्हें डरा। नूह ने कहा, हे मेरी जाति वालों, मैं डराने वाला हूँ। परमेश्वर की पूजा करो, उससे डरो और मेरा कहा मानो। अपना प्रयत्न निष्फल देख नूह ने कहा, हे प्रभु, मैं रात दिन अपनी जाति को बताता रहा, किंतु भागने के अतिरिक्त उनके पास मेरी पुकार न पहुंची। 71-1-13 उन्होंने तो कहा, अपने ठाकुर बद, सुआब, यूसुफ, यऊक और नस्र को न छोड़ना। नूह बोला, प्रभु, नास्तिकों का एक घर भी भूमंडल पर न छोड़ना, नहीं तो वह तेरे भक्तों को बहकावेंगे। 71-2-6-7 नूह अपनी जाति में 950 वर्ष रहा। 71-1-1-3-5-6 यहूदियों और ईसाइयों के माननीय ग्रंथ बाइबल की उत्पत्ति पुस्तक 7-9-28 में भी यह वर्णन है। 29-2-1 नूह के विषय में एक और स्थान पर कहा है, नूह को उसकी जाति के पास भेजा। जाति ने कहा, हम तुझे भूल में देखते हैं। नूह बोला, मैं भूल में नहीं हूँ, किंतु जगदीश्वर का प्रेरित हूँ। फिर उसकी जाति ने झुटलाया। तब हमने उसको और साथियों को नाव में बचा लिया और जो झुटलाते थे उन्हें डुबा दिया। 7-8-1-3-6 इब्राहिम महात्मा। इब्राहिम जब बालक इब्राहिम ने अपने आप आज़र से कहा कि अब मूर्ति को भगवान करके ग्रहण करते हो, मैं देखता हूँ तुम्हारा सारा वंश बहका हुआ है। उसके विश्वास के लिए इस प्रकार प्रलोभनार्थ शैतान ने भूमि और आकाश का राज्य दिखाया। अंधेरी रात में तारा देखकर पृष्ठ संख्या 31 इब्राहिम बोला, यह मेरा ईश्वर है। फिर जब वह अस्त हो गया तो बोला, मुझे अस्त होना प्रिय नहीं। चंद्रमा को कहा, यह मेरा ईश्वर है। फिर महान सूर्य को, अंततः सबकी अस्थिरता को देख बोला, मैंने अपने मुँह को उसकी ओर किया जिसने भूमि और आकाश को रचा है। 6-9-5-10 उसने अपने वंश से कहा, क्या पूजते हो? फिर मंदिर में घुसकर उनकी मूर्तियों से पूछा, तुम क्यों नहीं खाते? क्या हुआ है तुम्हें जो नहीं बोलते? तदनंतर दाहिने हाथ से उन्हें तोड़ने लगा। जब लोग घबराए हुए दौड़कर आए इब्राहिम ने उनसे पूछा, अपने हाथ के बनाए हुओं को क्यों पूछते हो? इन्हें चुनकर आग के ढेर में डाल दो। इब्राहिम के उस आचरण को देखकर उसके जाति वाले दांत घात लगाने लगे, किंतु हमने उन्हें ही नीचा दिखाया। 37:3-11, 17:21-23:24। इब्राहिम के मेहमानों पाहुनों ने भीतर आ सलाम किया। तब वह घर से घी में तला बछड़ा लाया, पूछा, क्या तुम खाते नहीं? इब्राहिम को डरा देख उन्होंने कहा, डर मत, हम तुझे एक ज्ञानी पुत्र होने का शुभ समाचार देते हैं। इसे सुन उसकी स्त्री ने सिर धुनकर कहा, 51:2-6, मैं बुढ़िया और मेरा पति बूढ़ा। 11:7-4, ईश्वर दूत बोले, शक्तिमान ज्ञानी महाप्रभु ने ऐसा ही कहा है। 51:2-7, हमने उस इब्राहिम को इसहाक और इस्माइल दो संतान दिए। 29:3-5, स्वप्न में प्रभु के नाम पर पुत्र को बलिदान चढ़ाने की उसे इच्छा हुई। पुत्र ने भी बाप की इच्छा सुन स्वीकार कर कहा, तुझे ईश्वरीय इच्छा से धैर्य मिलेगा। जब इब्राहिम ने उसे लिटाया तो परमेश्वर ने कहा, तूने अपने स्वप्न को सच कर दिखाया, अब इसके बदले एक बड़े पशु की बलि दे। 37:3-27-33, जब इब्राहिम ने पूछा, प्रभु तू कैसा मृतकों को पुनरुज्जीवित करेगा? प्रभु ने कहा, 4 पक्षी पकड़कर उनका एक एक टुकड़ा प्रत्येक पर्वत पर फेंक दे, फिर उन्हें बुला, वह तेरे पास दौड़ते आ जाएंगे। 2:35-3, लूत की कथा। महात्मा लूत। ईश्वर के दूत जब लूत के पास गए तो वह डरा, उसके अस्वाभाविक व्यभिचारशील जाति वाले उनके पास दौड़ आए। लूत ने उनसे कहा कि भाई, यह कर स्पर्श रहित मेरी लड़कियां मौजूद हैं, इनसे अपनी इच्छा पूर्ण करो। ईश्वर से डरो और मुझे अपने अतिथियों में बदनाम न करो। उन्होंने कहा, हमें तेरी लड़कियों से कोई मतलब नहीं, हम क्या चाहते हैं यह तू जानता ही है। अतिथियों ने लूत को भयभीत देख कहा, लूत, हम ईश्वर के दूत हैं, तू डर मत, आज रात में ही घर छोड़ निकल जा और पीछे फिर कर देखना नहीं। तेरी स्त्री अभागी की मारी पीछे मुड़कर देखेगी और जो पड़ना है उस पर पड़ेगा। दूसरे दिन प्रभु का कोप हुआ और दूतों ने उस बस्ती को पलट तर का ऊपर कर दिया तथा उस पर पत्थर बरसाया। 11:7-10-14, दूसरे स्थान पर यही वर्णन इस प्रकार आया है। लूत ने अपनी जाति को कहा, क्या ऐसी निर्लज्जता करते हो जिसे तुमसे पहले संसार में किसी ने न किया। तुम कामातुर हो, स्त्रियों को छोड़ मर्दों पर दौड़ते हो। जाति वालों ने कहा, इनको निकालो, यह बड़े पुण्यात्मा बनना चाहते हैं। भगवान ने एक स्त्री के अतिरिक्त जो पीछे रह गई थी उसके सारे कुटुंब को बचा लिया। 27:4-8-11, पृष्ठ संख्या 32। एक और स्थान पर लूत का उपदेश इन शब्दों में है। उनके भाई लूत ने कहा, मैं तुम्हारे लिए विश्वास पात्र प्रभु प्रेरित हूँ, सो प्रभु को डरो और मेरा कहा मानो। तुम संसार के मर्दों पर दौड़ते हो और तुम्हारे ईश्वर ने जिन्हें तुम्हारे लिए बनाया उन अपनी स्त्रियों को छोड़ते हो, तुम मर्यादा के उल्लंघन करने वाले हो। 26:9-3-7, यूसुफ की कथा। यूसुफ। बालक यूसुफ ने बाप याकूब से कहा, मैंने 11 तारे, चंद्रमा और सूर्य को अपने लिए प्रणाम करते देखा। पिता बोला, बेटा अपने स्वप्न को अपने भाइयों से मत कहना, अन्यथा वह धोखा देंगे। इस प्रकार ज्ञात होता है कि तेरा प्रभु तुम पर कृपा करेगा और तुझे रहस्य की बातें सिखाएगा एवं तुझ पर तथा याकूब संतति पर अपनी प्रसन्नता पूर्ण करेगा, जैसा कि उसने तेरे दो बाप दादो इस्माइल और इसहाक पर किया। 12:1-6, एक समय उसके भाइयों ने मंत्रणा की कि यूसुफ और उसका भाई बनियामीन हमारे बाप को हमसे अधिक प्रिय है, इसलिए आओ उन्हें एक दिन मारकर फेंक दिया जाए। तब एक ने कहा, उसको मारो मत, अंधे कुएं में डाल दो जिसमें कोई मुसाफिर उठा ले जाए। उन्होंने बाप को फुसलाकर किसी प्रकार यूसुफ को शिकार खेलने के लिए अपने साथ वन में जाने पर राजी कर लिया। वन में ले जाकर उसे कुएं में ढकेल दिया और उसकी कमीज को लोहू में रंग कर बाप के सामने रखकर कहा, उसे भेड़िया खा गया। उधर किसी यात्री समुदाय के एक आदमी ने पानी खोजने के समय यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे एक मिस्री सौदागर के हाथ बेच डाला। 12:2-14, मिस्री खरीदार ने सुंदर बालक को एक स्त्री मिस्र के राजमंत्री की स्त्री के हाथ बेच दिया। उसने भली प्रकार रखा। जब वह युवा हुआ तो उसकी सुंदरता पर उसका मन चलायमान हो गया, किंतु यूसुफ ने बात स्वीकार न की। अजीज मिस्र के राजमंत्री की स्त्री अपने दास पर मोहित है, यह बात नगर में फैल गई। इस पर अजीज की स्त्री ने नगर की स्त्रियों को बुलाकर यूसुफ के सामने उन्हें खरबूजा और छुरी दी। उनका चित्त यूसुफ की ओर इतना आकर्षित हुआ कि उन्होंने अपना हाथ काट डाला और कहा, हाशल्लाहु, आह भगवान, यह मनुष्य नहीं देवता है। यूसुफ से निराश होकर उस स्त्री ने उसे कैद की धमकी दी। यूसुफ बोला, जिधर मुझे बुलाती हो उससे जेल मुझे प्रियतर है। निदान यूसुफ जेल में डाल दिया गया। उसके साथ वहां दो और बंदी थे। एक रात दोनों ने सपने में देखा और यूसुफ से कहा, यूसुफ ने उसे जिसने सिर पर रखी रोटी को जानवरों से खाई जाती देखा था, कहा कि तू सूली पर चढ़ाया जाएगा और तेरा सिर जानवर नोचेंगे। दूसरे से जिसने शराब निचोड़ते देखा था कहा, तू राजा को शराब पिलाएगा और उनका प्रिय दास होगा, किंतु पदारूढ़ होकर मुझे स्मरण रखना। यूसुफ का स्वप्न विपाक ठीक निकला, किंतु राजा का सेवक होकर वह जीवित बंदी से उसे भूल गया। यूसुफ कितने ही वर्ष जेल में रहा, 12, 2 से 5। एक समय बादशाह ने स्वप्न देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खाती हैं, 7 बालें हरी और 7 सूखी हैं। राजा ने स्वप्न विचारने के लिए सगुनियों को बुलवाया। उसी समय उसके भूतपूर्व बंदी नौकर ने यूसुफ की प्रशंसा की। यूसुफ ने आकर बताया कि 7 वर्ष तुम्हारे राज्य में खूब फसल होगी और 7 बरस तक पानी न बरसेगा, इसलिए अनाज काट कर उसे बालियों में ही पड़ा रहने दो। राजा ने प्रसन्न हो यूसुफ की निरपराधता का पता पा कैद से छुड़ाकर उसे अपना काम सौंपा। पृष्ठ संख्या 33। अकाल के समय यूसुफ के ही हाथ में अनाज आदि का अधिकार था। एक समय उसके भाई भी अकाल के मारे उसके यहाँ अनाज लेने आए। बोरी तैयार होने पर उसने उनसे कहा, जब तक तुम्हारा छोटा भाई बनी अमीन न आएगा तुम माल न ले जा सकोगे। फिर किसी प्रकार बाप को राजी करके वह बनी अमीन को वहाँ लाए। उसकी तो इच्छा बनी अमीन को अपने पास रखने की थी। मिस्र के राजा के न्याय के कारण वह और प्रकार से अपने पास रख न सकता था, इसलिए उसने युक्ति सोची। बनी अमीन की बोरी में लोटा रखवा उसे चोर बनाकर पकड़ लिया। उसके भाइयों ने बहुत छुड़ाने का प्रयत्न किया। अंत में यूसुफ ने उनकी करनी को कह उन्हें लज्जित कर अपने आप को प्रकट कर दिया। अपने वियोग में रोते रोते अंधे हो गए बाप के पास उसने यह कह अपना कुर्ता भेजा कि इसके मुंह पर रखते ही उनकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, और यह भी कहा, घर सहित तुम सब यहाँ ही चले आओ। उसके आने के बाद बूढ़े माता पिता को सिंहासन पर बैठा सबने प्रणाम किया। 12:6-11। मूसा की कथा। महात्मा मूसा। मिस्र का फरौन, फरौन या फरवा मिस्र के सम्राटों की पदवी थी। पैलेस्टाइन फिलिस्तीन विजय कर वहां के बहुत से निवासियों को बंदी बना अपने देश में ले गया। पीछे राज आज्ञा हुई कि बंदी बनाए इन इसराइल की संतानों के कोई भी लड़के न बचने पावे, किंतु लड़कियां न मारी जाएं। मूसा के उत्पन्न होने पर उसकी माँ ने बच्चे को मारे जाने के डर से नहर में डाल दिया। वह संदूक फरौन की स्त्री के हाथ लगा। उसने इस बालक को बड़े प्रेम से संयोगवश उसकी माँ को ही दाई रख पाला। युवा होने पर एक मिस्री पुरुष से एक यहूदी को पिटते देख उसने उस मिस्री को मार डाला और आप भागकर मदयन में चला गया। वहाँ उसने ब्याह कर अपने ससुर के घर में 10 वर्ष तक ब्याह के बदले की गई प्रतिज्ञा के अनुसार सेवा की। जब अवधि पूरी होने पर वह परिवार को ले चला तो एक पर्वत पर उसने आग देखी। वह अकेला पहाड़ पर गया। वहाँ दिव्यवाणी हुई, मैं जगदीश्वर हूँ, अपने डंडे को भूमि पर डाल। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तो वह फनफनाता सांप हो गया। मूसा डरा। भगवान ने कहा, आगे आ मूसा, डर नहीं, अपने हाथ को बगल में दे। वह चमकीला निकल आया। भगवान से इस प्रकार 2 प्रमाणभूत चमत्कार पाकर प्रभु के आदेशानुसार वह फरौन के पास गया। 28:1-4। उसने फरौन के जादूगरों को अपने चमत्कार से जीता। रात को उसने इसराइल संतति को ले अपने देश की ओर प्रयाण किया। अपने दासों को इस प्रकार हाथ से निकलते देख फरौन सेना रहित पीछे दौड़ा। मूसा ने अपने डंडे के चमत्कार से समुद्र में मार्ग बना लिया, जिससे उसके जाति वाले पार हो गए। जब फरौन ने भी उसी तरह उतरना चाहा तो मूसा के डंडे के उठाने से सब वहीं डूब गए। रास्ते में इसराइल संतति को ईश्वर की ओर से दिव्य भोजन मन सलवास आता था। जब वह भगवान से बात करते और उसके आदेश लेने के लिए गया था और अपने भाई हारून के जिम्मे इसराइल संतति को कर गया था, तो इधर लोगों ने सामरी के बहकाने से बछड़ा बनाकर पूजना आरंभ किया। मूसा के क्रोधित होने पर पीछे हारून ने कहा, हे मेरी माँ के जने, न मेरी दाढ़ी पकड़, न सिर। मैं डरा कि तू कहेगा तूने बनी इसराइल संतति में फूट डाल दी। सामरी ने जिब्राइल की पृष्ठ संख्या 34 धूली से बछड़े बोलने की शक्ति तक उत्पन्न कर दी थी। 20:3-5। जब मूसा भगवान के पास बातें करने गया था तो उसने दर्शन मांगा। भगवान ने कहा, तू न देख सकेगा, अच्छा पहाड़ की ओर देख। उस तेज को देख वह मूर्छित हो गिर पड़ा। ईश्वर ने अपने आदेश को पट्टियों पर लिखकर उसे दिया। 7:16-18। दाऊद। हमने पर्वतों को दाऊद के अधीन कर दिया जो स्तुति करते हैं, एवं पक्षियों को भी। हमने तुम्हारे लिए उसे कवच बनाने की कारीगरी सिखा दी, जिससे युद्ध में तुम्हारा बचाव हो। 21:6-4-5। यही कुछ भेद के साथ 34:2-1-2। हमारे प्रभु के सेवक दाऊद को स्मरण कर, जिसके हाथ में बल था और जो अनुरक्त था। हमने पर्वतों को उसके अधिकार में दे दिया, जो प्रातः और सायं स्तुति करते और सारे पक्षी एकत्र हो उसके अनुरक्त होते थे। उसे हमने राज्य बल, चातुर्य और बात के निर्णय की शक्ति प्रदान की। तुझे उन वादियों की सूचना मिली है जो दीवार कूद कर मंदिर में आए। जब वह दाऊद के पास आए तो वह उनसे घबराया। उन्होंने कहा, भयभीत मत हो, हम दोनों वादी प्रतिवादी हैं। एक ने दूसरे पर अत्याचार किया है, सो हमारा न्याय कर, उपेक्षा न कर तथा हमें सीधा मार्ग बता। यह मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बा भेड़े हैं और मेरे पास 1। यह कहता है कि उसे भी मुझे दे दे, इसके लिए बलात्कार करता है। दाऊद बोला, अपनी भेड़ों में मिलाने के लिए तेरी भेड़ को मांगकर इसने तुझ पर बलात्कार किया। दाऊद ताड़ गया कि हम परमात्मा ने उसकी परीक्षा ली है। फिर उसने अपने प्रभु से क्षमा मांगी, दंडवत की और वह अनुरक्त हुआ। फिर हमने उसे क्षमा प्रदान की, उसके लिए हमारे पास उत्तम पद और उच्च स्थान है। हे दाऊद, हमने तुझे पृथ्वी पर अपना अधिकारी बनाया। 38:2-12। दाऊद की 99 स्त्रियां थी। उसने अपने पड़ोसी की एक स्त्री पर मुग्ध हो उसे भी जबरदस्ती लेना चाहा। उसने इसके लिए उस स्त्री के पति को युद्ध में भेज दिया, जहां वह मारा गया। फिर उससे उसने ब्याह कर लिया। दाऊद ने नियम किया था, एक दिन दरबार करना, एक दिन भगवत भजन करना एवं एक दिन अंतःपुर में रहना। यह पिछला ही दिन था जिस दिन द्वार से गमनागमन निरुद्ध होने से दो देवदूत दीवार फांदकर उसके उपर्युक्त अनुचित कृत्य को अन्यायपूर्ण बतलाने के लिए आए थे। वही वृत्तांत ऊपर कहा गया है। ऐसे ही बहुत से यहूदी ईसाई महात्माओं और यवन सिकंदर, इप्सी लुकमान आदि अन्य भी प्रसिद्ध व्यक्तियों का वर्णन कुरान में मिलता है। विस्तार भय से उनको यहाँ उद्धृत नहीं किया जा सकता।